के घर में गोपी इत्यादि के रूप में उनका यदि जन्म होता तो यह संभव था। इसलिए इनको ऐसा ही समझ लो कि पूर्व जन्म की ये बहुत उच्च कोटि के भावुक भक्त थी, इसलिए इस जन्म में वो मथुरा में जन्म ग्रहण करके मथुरा में ब्राह्मण के साथ में इनका विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद में अब वो नित्य सिद्धाओं के दूत दूतियों के द्वारा कुछ संग पा रहे हैं, डायरेक्ट उनका संग नहीं हुआ, मथुरा में तो आएंगे नहीं नित्य सिद्धाएं, और उनकी उनकी जो परिचारिकाएं इत्यादि हैं या जैसे फल विक्रणी फल बेचने वाले वो वहाँ की स्थिति यहाँ पर वर्णन करेंगे या वहाँ के लोग आकर के इसे वर्णन करेंगे। तो वर्णन करते करते कृष्ण के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा, कृष्ण का दर्शन करना चाहते किंतु दूर से ही इनका दर्शन संभव है। जब तक कि ब्रज में ब्रजगोपी के रूप में गोप के रूप में ये समय उनका जन्म नहीं होगा तब तक उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जनकपुर की राजकुमारी आती जर्थ की और जर्थ की ऊपर निषद चली थी, उन्होंने साधन भजन करके जन्म लिया कहाँ प्रकट लीला में गोपी से, तो इनका साधन भजन और अधिक होगा। पूर्व जन्म में उनके ऐसे साधन होंगे, उनके उन लोगों से महात्माओं के बड़े बड़े उच्च कोटि के कृष्ण रस भाविता मति वाले भक्तों से इनका संग हुआ और संग होने के कारण उनका लोभ उत्पन्न हो गया, किंतु अभी लोभ ठीक नहीं था इसलिए वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मणों से शादी हुई और उनके लिए विघ्न बाधाएं विपत्तियां बहुत बीच में खड़ी। गोपियों के लिए गोपी के घर में लोग सब जन्म लिया ज्योति की अजौती या कोई भी परिषद चले उनको ये सब बाधाएं उतनी नहीं, थोड़ी सी कसाय थी वो दूर हो गई, सिद्धा सहज रूप में उनका संग और इनका बहुत दिव्य है। अभी उनको जन्म प्रकट लीला में और लेना पड़ेगा, कृष्ण का इन्होंने दर्शन किया, दर्शन तो जैसे नारद जी को दर्शन दिया उत्कंठा बढ़ा दी, किंतु फिर इसके बाद में उनका जन्म प्रकट लीला में होगा और तब गोपी के रूप में उनका जन्म होकर के फिर नित्य सिद्धाओं के संग में तब जाकर के इनकी सिद्धि। इसलिए इनके भावों को साधक हैं, इसलिए साधकोचित रूप में इनका वर्णन कर रहे हैं। श्यामं किरण्य परिधिं वनमाल्य वरः धातु प्रवाल नटवेशम अनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तितरेण धुनाम नमर्चन कर्णोत्पलाल कपोल मुखाभ्यास। कृष्ण को कृपा करनी है, कृष्ण लीला में साधक सिद्ध और साधक भी तरह तरह के स्तर के प्रकट लीला में जन्म करके उनका दर्शन इत्यादि कर सकते, कंस भी उनका दर्शन कर सकता है, दशरथ के सेवक भी, शांतरस के सेवक भी, वासलरस के सेवक भी, सभी रसों के भक्त लोग और सभी अधिकारों के लोग भी उसमें रह सकते हैं, इसकी संभावना हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि ये ब्राह्मणिया मथुरा में जन्मी है, इनका जन्म भी मातृ ब्राह्मणों से इनकी शादी है। और कृष्ण की चर्चा सुनकर के पूर्व जन्म का किंतु है, वह बहुत दूर तक भावावस्था तक गई थी और तब यहाँ पर जन्म लिया है। अब कृष्ण चाहते हैं कि इनको अपने भाव में ले आए, ब्रज भाव में ले, इसलिए ब्रज भाव की एक झांकी इनको दे, इसलिए आज सखाओं के साथ में भांडिर बन जाने की बात थी। भांडिर बन जाने की बात थी किंतु गायें आगे बढ़ाएं और वो मथुरा और वृंदावन के बीचों बीच स्थान में यहाँ केवल अशोक के वृक्ष, अशोक में फल नहीं लगते हैं, फूल लगता है कि मैं नहीं कर सकता,
बहुत सुंदर लाल लाल
होता है अशोक में,
बहुत सुंदर,
तो फल नहीं लगते हैं, एक तरह से ये तटस्थ हैं, मथुरा और वृंदावन के बीच में तटस्थ भाव, इसलिए अशोक हैं, शोक नहीं है, ये तो है, किंतु वहाँ पर वैसा प्रेम नहीं है तटस्थ अवस्था में, उस जाति जो ब्रज के लिए जरूरी है वो सब भाव हमारी समझ से नहीं, इसलिए अशोक कोई फल तो कुछ है नहीं, और उनका खाने की जो वस्तुएं थी पदार्थ वो सब पहुंच गया है बंदीर बन सेवक लोग लेकर के पहुंच गए। अब ये दोपहर हो गया और लोगों को बड़ी भूख लगी, सखाओं ने कहा जैसे बहुत से असुर आए, असुरों से हमारी रक्षा की, किंतु ये असुर तो महाभयानक है, वो दिखाई भी नहीं पड़ता है और उसे प्राण बचाना भी बड़ा मुश्किल है, और ये असुर क्या है, हे कृष्ण हे बलराम आप हमें इससे हमारी रक्षा, कृष्ण ने देखा जी बीच में हम तो आए मथुरा और वृंदावन के बीच में, यहाँ पर तो कोई पेड़ टेड़ ऐसा फल वाला है ही नहीं है, केवल अशोक के वृक्ष की छाया सुशीतल है, ये तो है किंतु फल करता ने खाया पिया, तो उनको तो कृपा करनी थी इन पर, इसलिए सखाओं को भेज दिया, वहां पर यज्ञ हो रहा था कंस के, कंस की उन्नति के लिए उसकी समृद्धि के लिए ये लोग यज्ञ करते, कुछ लोग अपने लिए यज्ञ करते और कुछ लोग अपने राजा महाराजा के लिए यज्ञ करते हैं, तो ये लोग ब्राह्मण लोग थे, पैसा मिलता है राज्य कोष से, और उन्होंने वहां पर यज्ञ करना आरम्भ कर दिया है, उन लोगों ने भेजा, कृष्ण ने कहा तुम लोग उन लोगों से कहना जो कृष्ण बलराम रुके हैं घर जो धारण करने के लिए है, और आपका यज्ञ ऐसा नहीं है जिसमें कि पदार्थों को नहीं दिया जा सकता है, दिया भी जा सकता है, इसलिए आप कृपा करके कुछ हमें खाने के लिए, बच्चे गए और उनसे मांगा किंतु उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने दिया तो निराश होकर गए, बल्कि इनके तरफ देखा भी नहीं, ये कब कह करके बहुत इन लोगों ने कहा, किंतु इनकी एक बात नहीं, अंत में लौट आए और कृष्ण के यहाँ बोले जैसे हम लोग आप कहीं नहीं जाएंगे, उन लोगों का इतना नादर किया आप पर, लोगों का नाम लेने पर भी उसने कुछ भोजन नहीं दिया, अब हम नहीं जाए, कहा जैसे जो भिखारी जो होते हैं देखिए कहीं अपमान 10 जगह होगा एक जगह मिलेगा भी, कहीं अपमान होगा कहीं मान होगा कहीं कुछ होगा, भिक्षुओं के लिए अपमान अपमान की बात, इसलिए इसकी चिंता मत करो, जाओ उनके धर्मेंद्र की पत्नियों से मांग लो, उनकी पत्नियों के पास में समझा बुझा करके कृष्ण ने उनको भेज दिया, तो वहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर के लोगों से कहा, वो लोग दोपहर में मध्यान्ह काल में अपने अपने पात्रों में वो यज्ञ जहाँ हो रही थी ब्राह्मणों के यज्ञ अब दोपहर में समाप्त हो जाते हैं, वहाँ पर जाकर के उनको खिलाएंगे पिलाएंगे फिर लौटाएंगे, वहाँ पर लेकर के जा रही थी, कितने में लोग पहुँच गया और उनको कहा जो कृष्ण बलराम घर में आए हैं भूखे हैं, उनका पहले से ये ध्यान थी, बस पूरा का पूरा थाल लेकर के जाना था यज्ञ स्थली में, वो कृष्ण के गोचारण स्थल में वहाँ पर पहुँच गए, इन लोगों में से एक लौट करके आ रहा था, यज्ञ समाप्त हो गया था, वो जल्दी से पहुँच गया और अपनी पत्नी को जाते हुए देखा, बस उसको जबरदस्ती रोक करके कुछ गाली गलौज दी, अपमान किया उसको घर में, कैसे जाएगी टांग तोड़ देंगे, नहीं जानती कि कहाँ जा रही है, का एक अहित का छोकरा, और वैसा ही अपमान सूचक कुछ कहते हुए यहां पर लेकर के किस लिए जाए। वो घर में बंद हो गई और कृष्ण की चिंता करते करते अपने प्राणों को छोड़ा। प्राणों को छोड़ा मैंने क्या, प्राण नहीं छोड़ा, उस शरीर उसका शरीर की कुछ ऐसा हुआ और एकदम अपने शरीर से एकदम वहीं पर पहुंच गए। उसके अंदर में जो कुछ कषाय था ये कुछ दुर्भाग्य किंतु पूरा नहीं हुआ, गोपी तो बनी नहीं, वो गोपी नहीं
ब्राह्मणी था वो,
और गोपियां सब वो पहुंची और कृष्ण को जैसा देखा ऐसा ही सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर देखा। जब जमुना जी प्रवाहित हो रही है उससे किनारे में सुंदर अशोक वृक्ष के उपवन है, दोपहर होने पर सुशीतल हवा चल रही है, उसने जाकर के वो पहुंची अपने अपने थालों को लेते हुए वहां पर पहुंची। श्यामम हिरण्य परे दिन बन वाले पर धातु प्रवाल नटवे समान, श्यामम हिरण्य परे दिन कृष्ण को कैसा देखा, नौ मेघ श्याम जैसे, नमीन बादल जैसे जो पानी बरसाने वाले होते हैं, ऐसा सुंदर उनका, और उसी के ऊपर में परिधिंग माने पहना हुआ, हिरण्य हिरण्य माने सोने जैसे अत्यंत सुंदर चमकीला पीत वस्त्र धारण किया। पहनने में कैसे हैं पीत, अतः पीत वस्त्र शायद हिरण्य माने होता है जो हल्दी होती है ना, कच्ची हल्दी, कच्ची एकदम हल्दी, और उसको उस समय में तोड़ दिया जाए तो जैसे पीली होती है, उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने उसका यही कहा, अर्थ किया हरिद्रा का रस जैसा एकदम पीला एकदम होता, जैसे हल्दी कल्ची तोड़ दी जाए और जैसे सुंदर एकदम होती है, हम समझते कि उसका रंग एक चंपक पुष्प से भी अधिक तेज होगा, उज्ज्वल होगा, ऐसे ही खूब विद्युत जैसी जैसा उनका पहनने का वस्त्र है।
इसमें तो ये
सब तरह का धर्म करते हैं, सब प्रकार का आस्वादन करते हैं, कभी ऐसा भी करता है, इसीलिए कभी उस तरह का वर्णन, कभी विद्युत के समान वर्णन, कभी
चंपक पुष्प के
चंपक पुष्प के समान वर्णन इत्यादि करते, क्योंकि चंपक इत्यादि का वर्णन राधा जी के स्वयं कड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर, किंतु कृष्ण के लिए अधिकांश रूप में विद्युत की ही जैसा होगा, किंतु उन्होंने ये भी लिखा है कुंकुम और हल्दी दोनों को मिला करके जैसा आरंभ होता है ऐसा भी,
उसमें भी लालिमा बिजली में ये लालिमा नहीं
जरूर है। वनमाल्य बढ़ा वनमाला है, वनमाला उसको कहते हैं पांच छह फूलों की रंग के फूलों से, विशेष करके सफेद सुंदर, उसमें भिनी भिनी सुगंध हो, और उसे ग्रथित माला जो होती है जो गले से लेकर के पैर तक लंबित होती है, उसको बन माला। ये माला सखाओं ने गुथी है अथवा सखियों ने गुथ करके भेज दिया है, बड़ी सुंदर माला। कृष्ण समझ जाते हैं कि आज किसने माला गुथा, वो परस्पर परस्पर ऐसा उनकी ऐसी कलाएं हैं जो कि ये लोग समझ लेते हैं ये किसकी माला गुथी हुई है। तो बंद माले पर बरहा बरहा ने मयूर पिछिका किया, खूब सुंदर लगाए। अब वो कैसा किधर में झुका हुआ है, कैसा सुंदर है, ये सब उसमें भावनाएं हैं। धातु गरित घाती इत्यादि है जिससे तिलक की रचना हुई है, कथाओं ने की है यह सत्य में। और अलका इत्यादि धातु और सब धातुओं के अंगद इत्यादि के लिए सब कितने अंगों में है ये सब चित्रण होते हैं। प्रवाल नए कोमल लाल लाल पत्ते, जैसे आम के कोमल अशोक के कोमल पत्ते लाल लाल होते हैं, उनकी एक गुच्छ रखा, गुच्छ रखकर तो उसमें 8-10 पत्ते हैं और उसका एक गुच्छ लेकर के यहाँ पर लगा दिया भूल जा रहा है, या कभी कान पर ही रख लिया, कभी चूड़े की कभी किधर में उसको लगा दिया। और उससे क्या हुआ, नट बेश सुंदर नट का जैसा सुंदर नट पर बेश होता है ऐसा उनका सुंदर नटवर उसको कहते हैं जो नृत्य में कुशल हो, भावभंगी में कुशल हो, ऐसा सुंदर नटवर जैसे सजे हुए और उद्धत हो। उद्धत मैंने क्या, अपने बेश के प्रति कोई विशेष ये रुचि नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं लड़के ना बतम लगाया हुआ रहता है किंतु बतम को खोल करके थोड़ा सा मोड़ देते हैं ना, और ऐसे ही चलते हैं। तो ऐसे ही उसमें वो श्रृंगार की अपेक्षा भी और अधिक श्रृंगार हो जाता है, तो कृष्ण के लिए होगा साधारण लोगों के लिए। तो नट वेश अनुव्रत अन से कृष्ण का जो अनुव्रत निरंतर सब समय पीछे पीछे चलना ही जिनका धर्म है अर्थात सकाल है, उनके कंधे पर एक हाथ इस प्रकार से ललित त्रिभंगी रूप से खड़े हुए पैरों पर पैर रख करके तीन जगहों से टेढ़े पैर से कमर से सीधा नहीं कुछ टेढ़े और फिर यहाँ से टेढ़े हो करके
त्रिभंग क्यों है क्या बात है?
ललित होता है
ललित माने मनोहर किंतु त्रिभंग क्यों, ऐसे प्रश्न भी किसी ने किया था ये बंगाल
त्रिभंग होते हैं इसी बहुत सुंदर सौंदर्य उसमें होता है उसमें मादकता होती है उसके सब वो कुटिल कुटिल वो भाव है उसमें या किसी शास्त्रकार में वर्णन किया है उसी
दस शास्त्रकार उसी राजा जो ने तो और कुछ कहा होगा किंतु देखा भी है किंतु त्रिभुज का वास्तविक क्या
है? विन्यस्त हस्त हस्तम एक हाथ तो सखाओं के ऊपर में दिए हैं और दूसरा हाथ इतरेन हस्तेन भुनानम और दूसरे हाथ से अब जो मैंने सुंदर प्रस्फुटित कमल का फूल लेकर और उसको ऐसे हिला रहे घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं। क्यों घुमा रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी या और टीकाकार लोग कह रहे हैं कृष्ण का ही चित्त घूम रहा है इसलिए उसके बहाने इसको घुमा रहे हैं, अथवा दूसरों का चित्त घुमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आकर्षण करने के लिए ऐसा घुमा रहे हैं। इसमें सौंदर्य है तो धुनान मक्चर अथवा तो दृष्टा कौन है जो देख रहे हैं उनके चित्त को बरबस खींचने के लिए आकर्षण करने के लिए कृष्ण का ऐसा ही। यदि किसी पर प्रसन्न हो गए और यदि वह रूप किसी ने देख लिया फिर उसकी आंखें कभी भी संसार के रूप पर नहीं कभी भी आकर्षित हो सकती। जिनका कान कृष्ण के शब्दों को एक बार सुन लिया वो विश्व कोई भी सुंदर से सुंदर मधुर से मधुर भी शब्द वो नहीं सुनने की इच्छा। जिनका हम ही लोग अभी चरित्र सुनते हैं चरित्र सुनने से ही अब कृष्ण के रूप के समान और कोई नहीं जानता और जिसने उसको देख लिया उसकी क्या दशा होती है। जिन्होंने बिना देखे उनकी कथाओं को सुन करके ही सर्वस्व सब कुछ छोड़ दिया, त्याग किया, कभी जीवन में याद नहीं रखता और उसको कोई यदि देख ले तो क्या स्थिति होगी। इसलिए कृष्ण ऐसा आकर्षक रूप दिखलाते हैं जो जीवन जन्मांतर में कोई नहीं भूल सके उनको देख सके, इसलिए ये रूप भक्तों को दिखला रहे हैं। गुणानुमाप्यम विशेष करके बतलाते हैं श्रीमद् भागवत में, ये कलिकाल बड़ा भारी प्रबल है, सबके छक्का छुड़ा देता है ये कलिकाल, ऋषि महर्षि किसी को भी बात नहीं देता, सब में काम क्रोध लोभ मद मोह माफ कर ये सब लगा देता है। इसलिए कृष्ण ने देखा कि ये कलिकाल भयंकर आ रहा है, इसलिए ऐसा रूप प्रकट करो जगत में, ऐसी लीलाएं मनोहारी लीलाएं हम जगत में प्रकट कर, ये ऐसे दुर्दांत कली में भी लोग सहज रूप में हमारी इन जल्दी से होने वाली
लीलाओं का
वो कहीं न कहीं से जरूर सुनेंगे। जैसे आज से हमारा हमारे पिताजी के पिताजी तो उनकी बात तक तो हम सुन सकते हैं, किंतु उसके बाद वाली प्राय लुप्त हो जाती है, इसलिए जल्दी से आने वाले जो भगवान का अवतार है ये कृष्ण और कल उसके बाद में, इसलिए सन्निकट है ने इसे उनकी कथा है। अब हमने सुना कि हमारे पिताजी के पिताजी थे वो लोग महुआ होती है ना, महुआ का फूल सूखा हुआ तो दो चार किलो सुखा करके घी में भून देते और उसको उबाल करके आटा में मिला करके चार पांच किलो की बनती मोटी मोटी गुड़ लगा करके और उसको पूरा खा लेते
एक बार में,
और खा करके दो भैंसे बड़े बड़े मस्त लड़ रहे हैं, भैंसों का भी लड़ना नहीं देखा है,
देखा देखा वो लोग भूख जाए
प्राण जाएगा कि हाँ। छोड़ेंगे नहीं, एक को जरूर प्राण लेकर के तब छेड़े, मस्त मस्त भैंसे हैं लड़ रहे हैं, बहुत दूर से जाते हैं टकरा रहे हैं, सब 10-20 गांव के लोग आ गए आदमी और उनको छुड़ाने की चेष्टा करते हैं किसी प्रकार से दोनों को बचाएं, नहीं तो एक तो मरेगा जरूर, और धीरे धीरे लहू लुहान हो रहे हैं, किंतु यदि कोई भागेगा तो दूसरा जरूर उसको मारेगा, किसी भाग नहीं प्राण पर वो टिका हुआ सब लोगों ने कहा जैसे अब तो ये मरे, तो उनको खबर दी गई तो वो आए तो वो एक लठिया टेढ़ी टेढ़ी होती है बहुत पक्का बांस उसको लिया और एकदम पहुंच करके तो दोनों लड़ रहे थे, एक लाठी एक को मारा एक लाठी एक को मारा, बस दोनों बैठ गए, बैठ कर जल्दी से एक इधर भागा एक इधर भागा, ऐसे ऐसे गाड़ी एक बार अटक गई, गाड़ी अटक गई वो कीचड़ में फंस गई, पूरी लदी हुई थी गेहूं के बोरों से, बैल सब जीप काट करके बस किसी तरह से नहीं कर, तो उनको खबर दी गई तो आए बैलों को हटा करके अपने लिया और उसको ये तो संसार की बातें हैं क्योंकि अभी निकट है ना, उनके बाप दादों की तो बात नहीं जानते। वैसे ही कृष्ण का लीला चरित्र हम लोगों का भी निकट का है, महाप्रभु जी की लीला और सन्निकट है, वो आज लीलाएं नहीं होती तो कल जी उसे निकलने का हमारा कोई भी रास्ता, ऐसी सुंदर सुंदर मनोहारी लीलाएं उन्होंने की, कलयुग के जी ऐसी शक्तिशाली पावन परम पावन और प्रभावशाली इन कथाओं का श्रवण करके मस्तिष्क में चित्त लग जाएगा और लगने से क्या होगा, सहज ही माया को पार करके नित्य धाम में उसकी सामने, इसलिए कृष्ण की ऐसी ये सब लीलाएं जन्मत्त लीलोपैकम सजोग माया बलम दर्शयता लीलाओं को जगत में प्रकट करते हैं कैसे, अपनी जोग माया के प्रभाव से, जोग माया के प्रभाव से, इसलिए जगत के लोगों का, इसलिए कृष्णचंद्र जी ऐसे शाम अपने रूप को प्रकट करते हैं जो जो देखा हिरण ने भी देखा किसी ने भी देखा प्राणी ने बस चित्त को आकर्षित, केवल तिष्ठा नहीं करेगा, अत्यंत घोर अपराधी यदि हैं, अपने पाप के कर्मों से भले ही हिरण बैल गधे घोड़े पशु पक्षी कीट वृक्ष हुए हैं, उसमें कुछ आता नहीं जाता, उसे कृष्ण का प्रभाव पड़ेगा। किंतु यदि घोर अपराधी है गुरु वैष्णव और हरि के, तब वो कृष्ण का विरोधी हो जाएगा। यदि कृष्ण का रूप है, जैसे कंस है, दुर्योधन है, कर्ण है, शिशुपाल है, उनका क्रोध और भगव उठेगा। और इन लोगों का यदि पशु जन्म में भी हो, महापापी भी है, तो कोई बात नहीं, कृष्ण लीलाओं का श्रवण करके और उनका चित्त, इसलिए कहते हैं बिन सहस्त्र करें धुनानम अब्जम। कृष्ण लीला कमल के बहाने वो घुमा रहे हैं, किस लिए? जगत के जीवों के चित्त को आकृष्ट करके घुमाने के लिए। कैसे? अपने लीला चरित्र के प्रभाव, इतना सुंदर रूप वो भाव, इसके द्वारा लीला कमल, विशेष करके जो उनके सन्निकट हैं, भाव वाले, अनर्थ दूर हो गया है, भाव उत्पन्न हो गया है या प्रेम उत्पन्न हो गया है, ऐसे लोगों के लिए विशेष कर यही रूप। यदि द्वारका वाली देखे ना, तो क्या क्या होगा,
पागल है,
किंतु उनसे भी पागल होगी ब्रजवाली, उनमें भी पागल होंगे सबसे अधिक गोप गोपी, उनमें भी गोपी, उनमें भी प्राण प्रेष्ट सखी, उनमें भी प्राण प्रेष्ट सखियों में भी ललिता विशाखा, उनमें भी सुमति, ऐसा उच्च स्तर। कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्जहास्यम, कान पर सुंदर फूल है, अलका बहुत सुंदर, अलका अलका ऐसे होता है, अथवा अलका माने केस भी होता है,
चूर्ण केस, अलका बोले,
अलका बोली
छोटा,
इसके भी बहुत तरह से हैं। कृष्ण मान लिया कि उनके केस हैं, घुंघराले हैं ना, किंतु लंबे लंबे हैं, मान ले कि उनको यहाँ पर चोटी बांध दिया तो वो इस तरह से हो जाएंगे, उनको ढक कर हो जाएगा, और उसमें से कुछ बाल केस निकल करके इधर उधर यदि हो गए हैं, कितना सुंदर उनको, किंतु किशोर लोगों का ही होगा, कृष्ण का ही, और कृष्ण का यही सबसे सुंदर रूप। यदि किसी प्रकार से वो अस्त व्यस्त यदि हो गया वो और भी ये सुंदर हो, धूल यदि उस पर लग गई और भी सुंदर खिल जाए, सुंदर के ऊपर में जो कुछ लगाया जाएगा वो और भी आभूषण हो जाता है, इसलिए वो अलका तिलक है। कपोल सुंदर सुंदर कपोल, उसमें कर्णफूल लगाए हुए हैं, श्रृंगार के लिए सब सखाओं ने लगा दिया है, ये कर्णफूल है, और वो झूल रहे हैं या उनके कुंडल झूल रहे हैं, हाँ हाँ इसी के ऊपर में तो झूलता है, इसलिए उसकी शोभा इतनी है, इसलिए वो सुनता है। और ये दोनों संतरी हैं किसके, सुंदर हास्य युक्त ये मुखारविंद, इसलिए और भी वो सुंदर वहां पर हो। मुख अब्ज समस्त अंग ही उनके सुंदर, अंगों में भी दो भाग कर दो, नीचे का ऊपर, इधर चरण भी परम सुंदर है, यदि चरण में दृष्टि लग गई भक्तों की तो वहां से हटेगी नहीं, किंतु ये चरण रूपी खंभों के ऊपर में ये ऊपर वाला भाग श्रेष्ठ, ऊपर वाले भागों में भी पूरा मुखारविंद, मुखारविंद का भी दो भाग कर दिया, एक ललाट युक्त ये आंख तक और एक नीचे वाला, उस नीचे वाले में भी सुंदरता आंखें किंतु कपोल युक्त सुंदर और हास्य युक्त। कैसा हास्य? अब जमाने कमल जैसा हास्य जिसे विश्व ब्रह्मांड को आकर्षित कर सके, इसलिए उनको देखा और देख करके ठगी सी खड़ी रह गई। अभी जो बताए विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी का टीका में साधारण भूमि को वर्णन किया। इस तरह से इस प्रकार का ये ध्यान भी हो सकता है, ये मंत्रमयी उपासना है, इसका ध्यान भी हो सकता है। विशेष करके तीन श्लोक विशेष करके ध्यान के लिए, नमिद्यते अग्रवपुषे तड़िदम्ब्रा गुंजामतंस परिपुच्छल लसन मुखाय वन्नस्तजे कवलपित्र विशान वेणु लक्ष्मस्ये मृदुपदे पशुपाल। ये ब्रह्मा जी का और उसके बाद में इनका और इनके बाद ही गोपियों परहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिका ऋग्वदवासः कनत कपिशं वैजयन्ती च मालां हरन्ध्रान् वेणु अधर्सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपद रमणं प्राविशत्। उससे भी अब ये कलेक्शन की महिमा कैसे सुंदर सुंदर एक एक पर एक एक श्लोक सौंदर्य में भी एक दूसरे से और अधिक से अधिक सुंदर चल रहा है। हरि भजन करने के समय नाम करते समय में इन्हीं श्लोकों का उच्चारण हो तो अपने आप मन कहाँ जाए और उसका अर्थ भी चिंतन करते जाए और उनका जो भाव है उसमें वो निहित भावों को भी स्मरण किया। परिणाम कर रहा है दूसरी चिंताएं आने के लिए बाद हम उनकी चिंता नहीं कर करके श्यामं हिरण्य परिधिं वरमाल धातु प्रवाल नटवे समनुव्रतं विन्यस्त हस्तैकरेण धुनान्नमब्जं कर्णो प्रवाल पपो पठार करके अपने उसको चिंता करते हैं। चिंता करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। देखिए जैसे ये सब पत्नियां कृष्ण को देख रही और कैसे आतुर हो, वैसे ही आतुर होने की जब ये समाप्त हो गया आध घंटा 15 मिनट लग गया और उसके बाद ही में अब ये वरहा पीडं नट वर बहु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्ती रन्नावेवदर्शधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत। देख रहे हैं ये गोपियां घर में बैठी हुई हैं, इन जग पत्नियों से लग्न भाव में मग्न होकर के कृष्ण को बिना देखे हुए ही देख रहे हैं। कृष्ण कहाँ है? गोचारण में। और ये घर में बैठी हुई एक दूसरे से कह रही है भाई देखो तो तत्वर्णी तुम आराधा तत्वर्णितुम आराधा कृष्ण चेष्टितम नाशकं स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो तत्वर्णितुम आराधा कृष्ण कृष्ण विचेष्टितम नाशकं स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो। कृष्ण के इस रूप का वर्णन करने ये शरद ऋतु का वर्णन, सुंदर निर्मल जमुना में पानी चारों तरफ कमल खिल रहे हैं भौरे झंकार कर रही, कोयले कुहू कुहू कर रही, सारा वन से प्रतिध्वनित हो रहा है। एक जगह कोयल को कुहू करती है, पीछे से कोकिला करती है कुहू, और सब वन एकदम उस समय मयूर टयूर भी सुन करके स्तब्ध रह जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में वो लोग भी केक आ करते हुए वो भी नृत्य करने, वो कृष्ण इस वंश में वन में प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया? सखाओं के साथ में, बलराम के साथ, सौ राम राम के साथ, यहाँ पर सदैव वसंत तेरी दुर्गति, उसमें उन्होंने प्रवेश किया। प्रवेश करके जब प्रवेश करते हैं तो उनका वर्णन करते हैं, और ना सकन वर्णितुम आराध्य, उनका वर्णन करने लगी कृष्ण के रूप का, और उनकी गाथा कैसे दो चारण करते हैं, चल से चलते हैं, उनका रूप कैसा है, भाव कैसा है, करते 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 ना सकन नहीं, क्यों क्या हुआ? विक्षिप्त मनुष्य, उनका चित्त
विक्षिप्त।
विक्षिप्त किसको कहते हैं? क्षिप्त, विशेष रूप से
चला गया
एकदम वहां से, क्षिप्त माने बहुत दूर चला गया। क्या चला गया? यहाँ पर थी ना, अब बाहरी कोई, अब जगत का कोई आवेश ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? स्मर बेगेन, इतना प्रेम हो गया, इतना अधिक प्रेम में विवश हो गया। प्रेम में विवश होने से वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे भाई कैसे प्रेम में विवश हो गए? क्या इनको प्रेम में विवश किया? स्मर बेगो उनको किस लिए आया? अजय इसलिए आया, इसलिए आया,
इसी को तो पूर्व रहा है। इस पूर्व रहा को तो विप्रलंब होता
है, अभी अभी कम कम पावर
के विप्रलंब में पूर्व रहा मान बवाद प्रेम बच्चे,
इसलिए हुआ। कैसा? अब वो वर्णन कब क्या करेंगे? पहले भाव आया, भाव के द्वारा विवश होंगे, विवश के होने के बाद में शांत हो जाएंगे, तोष्णी हो जाएंगे, और इसके बाद में थोड़ी सी अर्धबाज्य अवस्था आई तो फिर उसी का वो गान, अब उसी का ये गान। गान कौन कर रहा है? सुखदेव गोस्वामी जी भी गान कर, उनके भावों को लेकर के गोपियां क्या कर रही हैं, कैसे उनका कैसे स्मर जगा, इसको कहते हैं उद्दीपन भाव। एक होता है विषय प्रेम का, एक आश्रय, एक उद्दीपन होता है, इसको कहते हैं आलंबन भाव। ये जब तक नहीं होगा तब तक साधक कुछ भी नहीं कर सकता, केवल हरे कृष्ण करने से ही वो भाव नहीं आएंगे। हाँ, उसे ये होगा जी सहज रूप में भव सागर से तर जाएंगे उस नाम के द्वारा, सहज रूप में। बड़े बड़े योगी लोग, तपस्वी लोग, ज्ञानी लोग बड़े कठिन तपस्या इत्यादि से, आराधना से जो तरते हैं, कोई आदमी तो राम राम कृष्ण कृष्ण कहने से, हरे कृष्ण कहने से तर जाएगा, सब उसके दुख विपत्तियां सब चली जाएंगी। ये बात तो ठीक है सर, किंतु उसे कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रेम में भी गोलोका हो सकता है, द्वारका का भी मिल जाएगा कृष्ण प्रेम, गोलोक वाला कुछ सस्ता है, किंतु नारायण प्रेम से महंगा है, राम के प्रेम से भी महंगा है, किंतु गोलोक से महंगा है द्वारका वाला, द्वारका से मथुरा, मथुरा से भी और ब्रज में भी, चार प्रकारों में से एक एक उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाएंगे। हम क्या कर रहे
हैं? ब्रज का चार प्रकार कैसे?
उनमें पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व से उत्तर एक एक श्रेष्ठ होता चला। तो ये उसमें भी ये काम कर रही हैं, या तो प्राण पृष्ठ सखियां कर रही है, अनेक उनमें सबसे श्रेष्ठ जो है श्रीमती राधिका जी, राधिका जी की ही उक्ति सुखदेव गोस्वामी जी उसी का वर्णन करते थे अगाते में, बताते बरहात कृष्ण का कैसा रूप है, बरहात बरहा मने मयूर कुछ, मयूर कुछ तो यहां पर लगा रहे, कैसे लगा रखा है, और भक्त से लगा रखा है, वो क्या कहते हैं उसको, अल्लड़ भाव से, अल्लड़ अल्लड़ भाव से एकदम नटवर रूप में, नटवर उसको कहते हैं, वर नटवर, वर माने विवाह करने के लिए एक जैसे तैसे व्यक्ति को भी सजा देते हैं तो वो वर हो जाता है, वो उसमें प्रधान हो जाता है, हजार आदमी बराती गए हैं किंतु उसमें किसको सेंटर करके सब लोग गए हैं, काला भी होगा ना तो उसको हल्दी इत्यादि सब लगा फगा कर और उसको सुंदर सोने का हार इत्यादि और अच्छे अच्छे आभूषण अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके घोड़े पर बैठा दें और सब लोग उसके पीछे पीछे चल गए तो वो बर है क्योंकि सबसे उस समय वही श्रेष्ठ सबसे, उसके पिताजी हैं और सब लोग हैं गुरुजन हैं किंतु सबसे श्रेष्ठ उसी को सेंटर करके सब जा रहा है और उसमें भी नटवर नट माने नृत्य करने वाला जो स्टेज पर सबसे पहले आकर के और सभा के सब लोगों को हजारों लोग बैठे हैं पिन ड्रॉप साइलेंट करा दे ऐसा सुंदर नाचेगा सब लोग देख करके आवाज जैसा तब सूत्रधार आकर के
आदि वर्णन करेंगे।
इसलिए वहां पर वृंदावन में हम लोगों ने देखा जबकि हजारों लोग बैठे हुए हैं सब लोग शोरगुल कर रहे हैं इधर उधर कर रहे हैं इतने में सुंदर सा एक युवक युवक नहीं छोटा सा लड़का शिशु शिशु
बालक
8-9 वर्ष का और एक लड़की को मैंने लड़के को ही सजा दिया लड़की और दोनों एक राधा कृष्ण या गोपी बना दी बहुत सुंदर वेश और इतने सुंदर रूप से नृत्य करने लगते हैं ये सब लोग देख करके ये नहीं कहना पड़ता ये चुप रहो अपने आप एक बार मैंने देखा जिसे ये गंडक उठक बैठक करते हैं ना तो ये पहलवान लोग उठक बैठक करते हैं और उन लोगों को देखा जाए इतना जल्दी से कितनी बार 100 बार की 200 बार 300 बार एकदम झटक ऐसा कर रहे हैं कोई पहलवान भी ऐसा नहीं कर सकता। एक बार एक थाली पर नाचते हुए मैंने देखा छोटा सा बच्चा ही था कैसे इतनी जल्दी से थाली पर नाचता हुआ सिर पर 4-5 खड़े रख करके उसके ऊपर में प्रदीप रख करके दोनों हाथों को छोड़ करके इतनी बारीकी से इतनी सुंदर कर सभी लोग दे करके आवाज तो ये नट हैं उन नटों में भी श्रेष्ठ हैं सब और उधर में बरहे हैं एक तो परम सुंदर और उसमें भी सुंदर सुंदर रूप से सजे हुए बरहा पीड़म बरहा का पीड़ मैंने बरहा मने मयूर इसलिए कि कृष्ण को देख करके ही वो नाचने लगते हैं और ऐसे नाचने पर कृष्ण अपनी बंसी बजाते हैं और बंसी बजाते ही और वो प्रसन्न होकर के ताल पर नाच एक आदमी ऐसे नाच रहा है खूब अच्छी तरह से नाच रहा इतने में किसी ने ये मृदंग या तबला अथवा ढोलक ले लिया और बजाने लगा और वो कैसे अब नाचेगा और दूसरा ऐसे ही मयूर नाचने लगे थोड़ी देर के बाद में मयूर ने प्रसन्न होकर के कृष्ण के लिए साधु साधु कृष्ण के लिए कह रहा है इतना सुंदर मृदंग तुमने बचाया और इसी पर मैंने नाचा इसलिए तुमको ये मैं दे रहा हूँ बस एक पंख झाड़ दिया झाड़ करके छोड़ दिया कृष्ण ने उसको लेकर के हाथों में पगड़ी में लगा आपका यह जो उपहार है मुझे स्वीकार है मैं इस पर सिर पर रखता हूँ और सदा के लिए आज ही के लिए नहीं
सदा के लिए
और सचमुच में मूल का पंख कितना सुंदर होता है और उसको लेकर के लगा लिया जैसे कृष्ण सुंदर नट है नृत्य करते हैं ना तो ये मोर भी वैसा ही इसलिए अपना सजातीय बंधु इसलिए सजाती का सौगात जो होता है उपहार और भी अधिक प्रिय होता है इसलिए अच्छा तो दाहिनी ओर लगाएंगे कि बाएं ओर लगाते हैं
बाएं
दाहिने और कभी भी लगाते हुए दाहिने ओर किसके लिए लगाएंगे, इसलिए बाएं ओर लगाते हैं। बाएं में कौन है? अरे किसको रिझाना है अपने रूप से, रिझाएंगे किसको? उन्हीं को रिझाएंगे, इसलिए उसको बाएं तरफ में रखते हैं। बराहा पीड़म, माने वो गिर रहा हो नीचे, मयूर पंख कहता है कि आपने हमारे सिर पर धारण कर लिया, अब हम आपके सिर पर रही ना रहना चाहते हैं। आप जिसको सबसे अधिक स्नेह करते हैं उनके चरणों में मैं लोट फोट जाना चाहता हूँ, इसलिए मानो उधर ही मैं झुका हुआ हूँ। न तो वर बहु कर्णयो कर्णिकार, कर्णिकार एक वचन, कर्णिकार माने वो कनेल कनेर का फूल, पीला पीला, बहुत ही सुंदर उसका गंध होता है, और सब ऋतुओं में भी फूलता है, सब ऋतु में बारह मास वो फूलता है। यदि किसी को कोई फूल नहीं मिलता है ना, तो अपने बगीचे में दो तरह का फूल लगाए, एक कनेर का और एक बारहमासिया जो सफेद फूल होता है, वो सब समय होता ही रहता है, तो उनको लगा दे, बस साल भर पूजा के लिए कुछ तो उसको मिलते रहेंगे। तो ये एक कनेर के फूल को उन्होंने कान पर लगा रखा है, एक कान, यहाँ पर एक वचन दिया गया कर्णिकारम कर्णयो, दोनों कानों में एक फूल, कभी इधर कभी इधर, माने मदमत्तता यहाँ दिखाई है। भरतवास, उनके कपड़े बड़े सुंदर सुशोभित होना, कैसे? कनक कपिसान, कनक के समान पीत, बहुत ही सुंदर वस्त्र उनके हैं। वैजयंती चमालम, और वैजयंती माला वहां पर,